एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कभी साइंस फिक्शन लगता था, पर अब तो हमारे चारों तरफ है, रोबोट्स।
हाँ बिल्कुल, रोबोट्स। और ये सिर्फ मतलब टिन के डब्बे नहीं है जो हिलते डुलते।
सही कहा, ये तो वो तकनीक है जो बदल रही है सब कुछ, हमारा काम, हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते भी। पर सवाल ये है कि इनका असली रोल क्या है, हम इनसे चाहते क्या हैं?
बिल्कुल सही सवाल। और इसी रोल, इसी मकसद को समझने के लिए आज हम जॉन एम जॉर्डन की दो किताबों को देखेंगे। एक है रोबोट्स ट्रांसफॉर्मेशन, कोलैबोरेशन एंड रियलिटी, और दूसरी MIT प्रेस की एसेंशियल नॉलेज सीरीज वाली रोबोट्स।
अच्छा, तो मतलब दो अलग अलग नजरिए मिलेंगे।
हाँ करीब करीब। हम देखेंगे कि भाई तकनीकी तौर पर ये रोबोट आज क्या कर सकते हैं, इनकी लिमिट क्या है, और असल दुनिया में इनका क्या काम चल रहा है।
और दूसरा नजरिया,
और दूसरा जो शायद और भी दिलचस्प है, कि ये रोबोट का आइडिया ये आया कहां से, इसका कल्चरल इतिहास क्या है, क्यों ये हमारी सोच पर, हमारी कल्पना पर इतना हावी है।
हाँ, और ये आज समझना जरूरी भी है। आजकल हर तरफ ऑटोमेशन, AI, नौकरियों का क्या होगा, इंसान और मशीन साथ कैसे रहेंगे, इन्हीं सब की बातें हो रही हैं।
जाहिर है, तो सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि रोबोट क्या कर सकते हैं, जरूरी ये भी समझना है कि हम उनसे क्या करवाना चाहते हैं, उनकी सही भूमिका, उनका सही रोल क्या होना चाहिए।
तो चलिए इस दुनिया में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं लेखक से, जॉन एम जॉर्डन।
हाँ, जॉन एम जॉर्डन। देखिए, ये कोई मतलब टिपिकल टेक एक्सपर्ट या सिर्फ इंजीनियर नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या खास बात है इनके नजरिए में?
खास बात यह है कि वो कई फील्ड्स को एक साथ लाते हैं। तकनीक तो समझते ही हैं, जाहिर है, पर साथ में बिजनेस स्ट्रेटजी, सोशल साइंसेज, और हाँ जो बहुत मजेदार है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज यानी STS, मीडिया कल्चर, इन सबको भी समझते हैं।
अरे वाह, मतलब तकनीक और संस्कृति दोनों। क्या वो बताते हैं कि कौन ज्यादा जरूरी है रोबोट्स के विकास में?
यही तो, वो दिखाते हैं कि ये दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। वो एक तरह से पुल बनाते हैं कि भाई रोबोट काम कैसे करते हैं, योगा टेक पार्ट, और रोबोट का विचार हमारे लिए मायने क्यों रखता है, हम उनसे क्या डरते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं, योगा कल्चरल पार्ट।
और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने असल कंपनियों, संगठनों के साथ काम किया है जो रोबोटिक्स लगा रहे हैं, तो वो मुश्किल टेक चीजों को आसान बनाते हैं, पर साथ ही ये भी बताते हैं कि देखो मौके क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं। वो हमें रोबोट को सिर्फ मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक सामाजिक चीज की तरह देखने में मदद करते हैं।
तो फिर उनकी किताबों का मेन मकसद क्या है, किसके लिए हैं ये? देखिए, जॉर्डन की किताबें एक तरह से गाइड बुक जैसी हैं। किसके लिए? आम पाठक, पॉलिसी बनाने वाले, बिजनेस चलाने वाले, स्टूडेंट्स, सबके लिए।
अच्छा,
जागरण में फंसे बिना वो हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि रोबोट क्या है, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि हम उन्हें कैसा देखना चाहते हैं और क्यों।
और जैसा हमने कहा था, फोकस डबल है। एक तरफ तो साफ साफ बताते हैं कि आज रोबोट असल में क्या कर सकते हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में, घरों में, कहां का इस्तेमाल हो रहे हैं।
हाँ, ये हो गया प्रैक्टिकल साइड, उनका आज का रोल।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो शायद ज्यादा बुनियादी सवाल है, कि मशीन बनने से पहले रोबोट एक आइडिया कैसे था, ये सोच आई कहां से? पता है कहां से? एक नाटक से।
हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में, RUR।
वही। और ये आइडिया हमारी उम्मीदों और डरों को कैसे बनाता बिगाड़ता आया है, ये हो गया कल्चरल और हिस्टोरिकल साइड, मतलब रोबोट के रोल की हमारी कल्पना।
सही कहा। तो किताब हमें एक सफर पर ले जाती है 1920s के उस चेक नाटक से, RUR, जिसने रोबोट शब्द दिया,
वहां से लेकर आज के AI वाले सिस्टम तक। ये सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, उस सोच का भी है जिसने टेक्नोलॉजी को दिशा दी, उसके लक्ष्य तय किए।
चलिए इसी सोच की जड़ों में थोड़ा और उतरते हैं, कहां से आया ये आइडिया?
हाँ, तो ये रोबोट का आइडिया अक्सर लगता है कंप्यूटर युग की देन है, पर कहानी थोड़ी पुरानी है और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी भी। जैसा जिक्र हुआ, 1920 कैरल चापेक का नाटक RUR, यहीं से दुनिया को मिला शब्द रोबोट।
और आपने कहा था इस शब्द का मतलब वो जानना जरूरी है।
हाँ, बहुत जरूरी। ये चेक भाषा के शब्द रोबोटा से आया है और इसका सीधा मतलब है बंधुआ मजदूरी, बेगार, फोर्स्ड लेबर।
ओ, मतलब शुरुआत ही गुलामी से जुड़ी है।
बिल्कुल। सोचिए, शब्द की पैदाइश ही इस विचार से हुई और इसीलिए शुरू से ही रोबोट के साथ डर जुड़ गए। नौकरी जाने का डर, मशीनों के बगावत करने का डर, मशीन में चेतना आ गई तो क्या होगा? ये सारे सवाल। चापेक के नाटक में भी तो यही होता है। इंसान अपनी सहूलियत के लिए आर्टिफिशियल मजदूर बनाते हैं रोबोट, जिनका कोई हक नहीं, कोई फीलिंग नहीं, सिर्फ काम।
और फिर वो बगावत कर देते हैं।
हाँ, अंत में वही रोबोट इंसानों के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। तो रोबोट की पहली कल्पना ही एक ऐसे सेवक की थी जिसका रोल सिर्फ हुक्म मानना था, और उसी में उसके विद्रोह का डर भी छिपा था।
कमाल है, एक नाटक का शब्द और विचार और उसने पूरी टेक्नोलॉजी की दिशा तय कर दी। पर क्या ऐसी मशीनें बनाने का विचार एकदम नया था? पुराने जमाने में भी तो कुछ कोशिशें हुई थी ना।
हाँ, हुई थी। ऑटोमेटा थे ना, मैकेनिकल खिलौने या मशीनें, जैसे वो वाउकेंसन की बत्तख थी जो दाना खाती थी, पचाने का नाटक करती थी, या घड़ियों में नाचने वाले पुतले।
हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में। लेकिन जॉर्डन बताते हैं कि इन ऑटोमेटा और बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले ऑटोमेशन में एक बहुत बड़ा फर्क था, और वो फर्क था उनके मकसद का, उनके गोल का।
अच्छा, क्या फर्क था?
ऑटोमेटा का मकसद था एंटरटेनमेंट, लोगों को हैरान करना, कारीगरी दिखाना, जबकि ऑटोमेशन, जैसे वो जैकवेड लूम था कपड़ा मिलों में या फैक्ट्रियों में टेलरिज्म, इनका सीधा मकसद था इंसानी मेहनत को हटाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, कॉस्ट कम करना।
हाँ, मतलब एफिशिएंसी।
बिल्कुल। यहां मकसद मजे से बदलकर पूरी तरह प्रोडक्टिविटी पर आ गया। तो रोबोट के विचार का एक सिरा यहां भी जुड़ता है, काम करने वाली मशीन।
और फिर कहानी में एक और जरूरी मोड़ आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, साइबरनेटिक्स का सिद्धांत। नॉर्बर्ट वीनर जैसे लोगों ने इसमें बहुत काम किया। उन्होंने फीडबैक लूप का कॉन्सेप्ट दिया।
फीडबैक लूप, ये क्या चीज है? आसान शब्दों में।
आसान शब्दों में सोचिए, जैसे हमारा शरीर तापमान के हिसाब से एडजस्ट करता है, गर्मी लगे तो पसीना, ठंड लगे तो कंपकंपी, ये फीडबैक है। सिस्टम अपने माहौल से जानकारी लेता है और अपने काम करने का तरीका बदलता है।
अच्छा, समझा। तो इसका रोबोट से क्या लेना देना? इसने रोबोट के रोल को कैसे बदला?
इसने तो रोबोट की परिभाषा ही बदल दी। अब रोबोट सिर्फ एक, मतलब पहले से सेट प्रोग्राम पर चलने वाला पुतला नहीं रहा। फीडबैक लूप के आइडिया से ऐसी मशीनें बनाने का रास्ता खुला जो अपने आसपास के माहौल को समझ सकें, उससे सीख सकें और उसके हिसाब से अपने एक्शन बदल सकें।
ओह, यानी सोचने वाली मशीन।
हाँ, यहीं से इंटेलिजेंट सिस्टम की नींव पड़ी। रोबोट का संभावित रोल अब सिर्फ हुक्म मानने वाले नौकर से बढ़कर एक ऐसे एजेंट का हो गया जो थोड़ी आज़ादी से काम कर सकता था। इसने रोबोटिक्स और फिर AI के विकास की दिशा ही तय कर दी।
और इसी दौर में वो साइंस फिक्शन वाली कहानियां, आइज़ैक आसिमोव, उनके रोबोटिक्स के 3 नियम तो बहुत फेमस है। क्या थे वो नियम, जरा याद दिलाएंगे?
हाँ जरूर। पहला नियम, रोबोट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही चुप रहकर इंसान को नुकसान होने देगा। दूसरा, रोबोट इंसान के आदेश मानेगा, पर तब तक ही जब तक वो पहले नियम के खिलाफ ना हो। और तीसरा, रोबोट अपनी रक्षा करेगा जब तक कि वो पहले या दूसरे नियम के खिलाफ ना हो।
और मजे की बात देखिए, आसिमोव ने ये नियम अपनी कहानियों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिखे थे, दिखाने के लिए कि कैसे ये नियम टूट सकते हैं या उनमें कन्फ्यूजन हो सकता है।
हाँ, उनकी कहानियों में अक्सर ऐसा होता था।
पर हुआ क्या, ये फिक्शनल नियम आज भी असली दुनिया में AI एथिक्स और रोबोट डिजाइन की बहसों में बार बार आते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या हमें असली रोबोट के लिए ऐसे नियम बनाने चाहिए।
कमाल है, मतलब कल्पना ने हकीकत को रास्ता दिखा दिया, खासकर जब हम तकनीक के रोल और उसकी नैतिक सीमाओं की बात करते हैं। बिल्कुल। चलिए अब कल्पना से जरा हकीकत पर आते हैं। पहला असली इंडस्ट्रियल रोबोट कब और कहां?
वो था यूनिमेट 1961 में, अमेरिका में जनरल मोटर्स की फैक्ट्री में।
हाँ, ये बड़ा फर्क दिखाता है कल्पना और हकीकत का। यूनिमेट कैसा था? क्या वो इंसान जैसा दिखता था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा फिल्मों में दिखाते थे वैसा कुछ नहीं। वो असल में एक बहुत बड़ी भारी भरकम मैकेनिकल बांह थी, एक ही जगह फिक्स।
और काम क्या करता था वो?
उसका काम था गरम मेटल के टुकड़ों को उठाना और एक जगह से दूसरी जगह रखना। ऐसा काम जो इंसानों के लिए खतरनाक था, थकाने वाला था, और हाँ, उसे सुरक्षा के लिए एक पिंजरे में रखते थे।
तो मतलब कल्पना थी एक इंटेलिजेंट साथी की, पर हकीकत थी एक औजार की, एक स्पेशलाइज्ड औजार।
एकदम सही।
जिसका मकसद बहुत सीमित था और पूरी तरह इंडस्ट्रियल।
वो तो 60 के दशक की बात हुई। आज के रोबोट वो किन टेक्नोलॉजीज पर चलते हैं। जॉर्डन कैसे समझाते हैं इसे? जॉर्डन कहते हैं कि आज के रोबोट कई तकनीकों का मेल है, पर मोटे तौर पर चार मेन हिस्से हैं। और ये सिर्फ पुर्जे नहीं हैं, ये असल में उन सवालों के जवाब हैं कि मशीनें कैसे महसूस करें, कैसे हिलें डुलें, कैसे सोचें और कैसे सीखें।
अच्छा, क्या है वो चार हिस्से?
पहला, सेंसर। ये रोबोट की इंद्रियां हैं, कैमरा, माइक्रोफोन, टच सेंसर, लिडार, जिनसे वो माहौल को जानता है। दूसरा, एक्चुएटर। ये उसकी मांसपेशियां हैं, मोटर्स वगैरह, जो उसे हरकत देते हैं। तीसरा, कंट्रोल सिस्टम। ये उसका दिमाग है, कंप्यूटर प्रोग्राम, जो सेंसर की जानकारी लेकर एक्चुएटर को बताता है कि क्या करना है।
और चौथा?
वो एआई वाला पार्ट। हाँ, चौथा और सबसे अहम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ये वो ताकत है जो रोबोट को सीखने, फैसले लेने और माहौल के हिसाब से ढलने में मदद करती है। जॉर्डन कहते हैं कि इन सब का कॉम्बिनेशन ही तय करता है कि रोबोट क्या रोल निभा सकता है।
श्रीमें, ये तो खैर उनका पुराना गढ़ है, टोयोटा से लेकर अमेज़न के वेयरहाउस तक, वेल्डिंग, पेंटिंग, सामान उठाना। पर अब जोर कोलैबोरेशन पर है, इंसान और रोबोट मिलकर कैसे काम करें।
अच्छा, मतलब साथ साथ।
हाँ, फिर हेल्थ केयर में देखिए, दाविंची सर्जिकल सिस्टम जैसे रोबोट, ये खुद ऑपरेशन नहीं करते, डॉक्टर ही ने कंट्रोल करते हैं, पर ये डॉक्टर के हाथ की प्रिसीजन बढ़ा देते हैं, छोटे चीरों से बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं।
वाह। और
फिर हैं स्वायत्त प्रणालियां, सेल्फ ड्राइविंग कारें, ड्रोन। इनका लक्ष्य है बिना इंसानी मदद के चलना। हालांकि असली दुनिया की अप्रत्याशिता अभी भी एक चुनौती है।
हाँ, वो तो है, सड़क पर कभी भी कुछ भी हो सकता है।
बिल्कुल। फिर हमारे घरों और दुकानों में भी आ रहे हैं सर्विस और उपभोक्ता रोबोट। रूम्बा वैक्यूम क्लीनर तो आम है, होटलों में सामान पहुंचाने वाले रोबोट्स भी दिखने लगे हैं।
और वो सोशल रोबोट्स जिनका आपने जिक्र किया था।
हाँ, सामाजिक रोबोट, जैसे वो पारो सील मछली जैसा रोबोट जो जापान में बुजुर्गों को कंपनी देता है, ये बड़ा संवेदनशील एरिया है। यहीं पर वो अनकैनी वैली वाली बात आती है।
अनकैनी वैली, ये क्या है?
ये वो अजीब सी फीलिंग है जब कोई रोबोट या एनिमेशन हद से ज्यादा इंसानों जैसा लगने लगता है, पर पूरी तरह नहीं। मतलब कुछ गड़बड़ लगती है, थोड़ा डरावना सा।
समझा। लेकिन इतने सारे उदाहरणों के बाद जॉर्डन किस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं? वो जोर देते हैं कि देखो, रोबोट कितना भी अच्छा हो, उसकी सफलता सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, मतलब वो किस माहौल में किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और इंटीग्रेशन, यानी उसे मौजूदा सिस्टम, प्रोसेस और सबसे जरूरी, इंसानों के साथ कैसे फिट किया गया है।
हाँ, ये इंटीग्रेशन वाली बात बहुत अहम है।
बिल्कुल। लक्ष्य सिर्फ इंसानों को हटाना नहीं होना चाहिए। असली कामयाबी तब है जब इंसान और रोबोट मिलकर काम करें, कोलैबोरेशन। रोबोट का रोल एक सहयोगी का होना चाहिए, कॉम्पिटिटर का नहीं। तो इस पूरी बातचीत से, जॉर्डन के विश्लेषण से, क्या मुख्य बातें या थीम्स निकल कर आती हैं? इन्हें समझना जरूरी है। मेरे हिसाब से पहला थीम है रियलिटी बनाम साइंस फिक्शन। फिल्मों वाले रोबोट और असली रोबोट में अभी भी बहुत फर्क है। हमें असलियत समझनी होगी कि आज रोबोट क्या रोल निभा सकते हैं। हवाई उम्मीदें ठीक नहीं।
बिल्कुल सही। और दूसरा थीम सीधे रोबोटा वाले आइडिया से जुड़ता है, श्रम, दास्तां और सहयोग। क्या रोबोट सिर्फ हमारे गुलाम हैं? क्या वो नौकरियां छीन लेंगे, या वो हमारे सहयोगी बनेंगे जो हमें मुश्किल कामों से आजाद करें?
हाँ, और भारत जैसे देश में तो ये सवाल और भी बड़ा है। यहाँ रोजगार का मुद्दा इतना अहम है। ऑटोमेशन का असर क्या होगा? क्या हम रोबोट को सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए देखेंगे, या इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले साथी के रूप में? यही उनका रोल तय होता है।
तीसरा थीम भी बहुत दिलचस्प है, कल्पना हकीकत को आकार देती है। हमने देखा ना कैसे चापेक के नाटक या आसिमोफ के नियमों ने असली दुनिया के विकास और नैतिक बहसों को प्रभावित किया। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी कल्पना सिर्फ कल्पना नहीं, वो भविष्य का नक्शा भी बनाती है और तय करती है कि हम तकनीक से क्या उम्मीद रखते हैं, उसे क्या भूमिका देना चाहते हैं।
चौथा थीम थोड़ा प्रैक्टिकल है, संदर्भ और एकीकरण मायने रखता है। एक बढ़िया रोबोट भी बेकार हो सकता है अगर उसे सही काम न मिले, या उससे बाकी सिस्टम और लोगों के साथ ठीक से न जोड़ा जाए।
हाँ, तकनीक अपने आप में जादू नहीं है। भारत में अक्सर ऐसा होता है, अच्छी तकनीकें फेल हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लोकल जरूरतों के हिसाब से नहीं ढाला जाता या सही सपोर्ट नहीं होता।
बिल्कुल। तो रोबोट का रोल सिर्फ उसकी काबिलियत पर नहीं, बल्कि उसे कैसे लागू किया जाता है, इस पर भी निर्भर है।
और पांचवा थीम जो शायद सबसे गहरा है, रोबोट्स मानवता का आईना है। जब हम रोबोट बनाते हैं, खासकर उनमें इंटेलिजेंस या इमोशन डालने की कोशिश करते हैं, तो हम असल में खुद से सवाल पूछ रहे होते हैं। इंटेलिजेंस क्या है, इमोशन क्या है, इंसान होने का मतलब क्या है?
सही बात है। रोबोट बनाने की कोशिश में हम अपनी ही चिंताएं, अपनी उम्मीदें, अपनी प्राथमिकताएं दिखाते हैं। हम उन्हें जो रोल देते हैं वो असल में हमारे अपने मूल्यों का आईना होता है।
जॉर्डन के काम में कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ खास विचारों को देखें तो तस्वीर और साफ होती है। पहला, रोबोट आर्टिफिशियल इंसान नहीं है, वे परिष्कृत उपकरण हैं जो मानव क्षमताओं का विस्तार करते हैं।
मतलब उन्हें इंसान समझने की गलती ना करें।
हाँ, उनका असली रोल खास कामों में हमारी मदद करना है, हमारी जगह लेना नहीं। वो सहयोगी हैं, हमारे जैसे नहीं।
मतलब ऐसा रोबोट बनाने की कोशिश करना जो सब कुछ कर ले, शायद सही रास्ता नहीं है। कामयाबी तब मिलती है जब रोबोट को किसी एक खास काम या समस्या के लिए डिजाइन किया जाता है। फोकस जरूरी है।
बिल्कुल। तीसरा विचार उनकी कामयाबी की असलियत से जुड़ा है। एकीकरण की चुनौतियां, न कि तकनीकी सीमाएं, रोबोटिक्स अपनाने में प्राथमिक बाधाएं हैं।
ये बात गहरी है। हम सोचते हैं तकनीक अच्छी नहीं है इसलिए रोबोट कामयाब नहीं, पर जॉर्डन कह रहे हैं असली मुश्किल तकनीक में नहीं, उसे मौजूदा सिस्टम, लोगों की ट्रेनिंग, मैनेजमेंट के साथ जोड़ने में है।
हाँ, रोबोट को सिस्टम का हिस्सा बनाना ही असली चैलेंज है।
चौथा विचार हमारी उम्मीदों को थोड़ा ठीक करता है। रोबोट क्रांति अचानक सफलताओं के माध्यम से नहीं, बल्कि विशिष्ट अनुप्रयोगों में वृद्धिशील सुधारों के माध्यम से धीरे धीरे हो रही है। मतलब कोई एक सुबह दुनिया रोबोट से नहीं भर जाएगी, ये बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, छोटे छोटे कदमों से, तो सब्र रखें।
और आखिरी, जो शायद सबसे बड़ा सवाल उठाता है, असली सवाल इंजीनियरिंग के नहीं बल्कि नैतिकता, दर्शन और समाज के हैं। तकनीक तो बन जाएगी, पर हम उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं? समाज पर असर क्या होगा? क्या ये सही है? किस मकसद के लिए रोबोट बनाएं? ये सवाल इंजीनियरिंग से ज्यादा इंसानियत और मूल्यों के हैं।
ये सारे विचार वाकई सोचने का नया नजरिया देते हैं, पर इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या काम में क्या मतलब है? अलग अलग लोग इन्हें कैसे इस्तेमाल करें? जैसे बिजनेस लीडर्स के लिए सबक है, सिर्फ ट्रेंड के पीछे मत भागो, पहले देखो कि कौन सी खास समस्या है जो रोबोट हल कर सकता है, फिर सिर्फ मशीन खरीदने पर नहीं, उसे अपने सिस्टम और लोगों के साथ एकीकृत करने पर ध्यान दो, और कर्मचारियों को डराने के बजाय सहयोग के लिए तैयार करो, रोबोट का सही रोल तय करो।
बिल्कुल। और पॉलिसी मेकर्स के लिए, उनके लिए ये चेतावनी है कि इंतजार मत करो। ऑटोमेशन का रोजगार पर असर, डेटा प्राइवेसी, एआई एथिक्स, इन पर पहले से सोचो, नीतियां बनाओ। खासकर भारत जैसे देश में ये बहुत जरूरी है। तकनीक का फायदा सबको कैसे मिले, ये सोचना होगा।
टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी संदेश है। भविष्य के लिए तैयार होने का मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग सीखना नहीं है, रोबोटिक्स और एआई के सामाजिक, नैतिक, आर्थिक पहलू समझना भी उतना ही जरूरी है। ऐसा नजरिया अपनाना होगा जहां टेक और ह्यूमैनिटीज साथ चलें। बच्चों को सिर्फ रोबोट बनाना नहीं, ये सोचना भी सिखाना होगा कि उसका समाज में क्या रोल हो।
हाँ, और कर्मचारियों के लिए डरने के विषय में तैयारी करो। सोचो कौन से काम हैं जिनमें इंसान मशीनों से बेहतर हैं। क्रिएटिविटी, एम्पथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, इन स्किल्स को बढ़ाओ। भविष्य शायद कोबोटिंग का हो, इंसान और रोबोट साथ काम करेंगे। तो सवाल है कि आप उस सहयोगी रोल के लिए कैसे तैयार होते हैं?
और आखिर में, जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, उनके लिए भी सबक है। सिर्फ शानदार मशीन बनाना काफी नहीं, ये सोचना भी जरूरी है कि वो मशीन असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल होगी, लोगों पर क्या असर डालेगी। सिस्टम लेवल की सोच जरूरी है। उनके बनाए टूल का सही मकसद तय करना भी उनकी जिम्मेदारी है।
इसे और साफ करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण सोचें। मान लीजिए भारत में कोई छोटी वर्कशॉप है जो हाथ से कारीगरी का सामान बनाती है। वो शायद पूरी फैक्ट्री ऑटोमेट न करे, पर किसी एक मुश्किल या खतरनाक काम के लिए, जैसे पॉलिशिंग के लिए, एक छोटा सहयोगी रोबोट, कोबोट इस्तेमाल कर सकती है।
हाँ, जहाँ रोबोट कारीगर की मदद करे, उसे हटाए नहीं।
बिल्कुल। या फिर स्कूल के रोबोटिक्स क्लब में बच्चे सिर्फ रेस जीतने वाला रोबोट ना बनाएं, बल्कि सोचें कि उनके मोहल्ले की किसी समस्या, जैसे कचरा उठाने में, रोबोट कैसे मददगार हो सकता है। मतलब उसके सामाजिक रोल पर फोकस करें। मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे चौंकाने वाली बात निकली, वो शायद रोबोटा शब्द की कहानी है, बंधुआ मजदूरी। ये सोचना कि रोबोट का आइडिया ही कहीं ना कहीं शोषण से जुड़ा है, आज की ऑटोमेशन बहस को बिल्कुल अलग नजर से दिखाता है।
हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।
और दूसरी बात, कल्पना का असर। कैसे एक नाटक और कुछ कहानियां हकीकत को इतना ज्यादा बदल सकती हैं, ये दिखाता है कि रोबोट्स को समझने के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग की नजर काफी नहीं, एक मानवीय और यथार्थवादी नजरिया जरूरी है।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा जरूरी लगी वो है सहयोग पर जोर, कि रोबोट की असली ताकत इंसानों को रिप्लेस करने में नहीं, उनकी क्षमता बढ़ाने में है। ये ऑगमेंटेशन वाली सोच ज्यादा उम्मीद देती है। और हाँ, ये कि रोबोट वाकई हमारे आईने हैं, हम उन्हें जो भी मकसद या रोल देते हैं वो हमारी अपनी इच्छाओं और जरूरतों को दिखाता है।
सही कहा।
तो रोबोट्स के बारे में बात करना असल में खुद के बारे में, अपने समाज के बारे में बात करना है। और इसी सोच के साथ मैं एक सवाल सबके लिए छोड़ना चाहूंगी, जैसे जैसे रोबोट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं, हम ये कैसे पक्का करें कि वे हमारी इंसानियत को कम ना करें बल्कि उसे और निखारें? और ये जो हमारा जुनून है मशीनों में जीवन या बुद्धि बनाने का, ये असल में हमारे अपने बारे में क्या कहता है? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।